ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड न्यू जर्सी अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 5 मई 2024 के लिए है। विषय: हमेशा की सजा। स्वर्णपथ: यशाया। जब तक यहोवा मिल सकता है, तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक वो निकट है, तब तक उसे पुकारो। उत्तरदायी अध्ययन: यशाया, भजन संहिता। दुष्ट अपने चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वो उस पर दया करेगा। वो हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वो पूरी रीति से क्षमा करेगा। यहोवा दयालु और अनुग्रह करी, विलंब से कूप करने वाला और अति करुणामय है। वो सर्वदा वादा विवाद करता ना रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवियों के ऊपर प्रबल है। उदयाचल अस्तचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवियों पर दया करता है। पाठ उपदेश बाइबल में से यशाया। यहोवा यूं कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, उद्धार करने के दिन मैंने तेरी सहायता की है। मैं तेरी रक्षा करके तुझे लोगों के लिए एक वचा ठहराऊंगा, ताकि देश को स्थिर करे और उजड़े हुए स्थानों को उनके अधिकारियों के हाथ में दे दे, और बंधुओं से कहे बंदीघर से निकल आओ, और जो अंधेरे में हैं उनसे कहे अपने आप को दिखलाओ। वो मार्गों के किनारे किनारे पेट भरने पाएंगे, सब मुंडे टीलों पर भी उनको चराई मिलेगी। और मैं अपने सब पहाड़ों को मार्ग बना दूंगा और मेरे राजमार्ग ऊंचे किए जाएंगे। हे आकाश जय जयकार कर, हे पृथ्वी मगन हो, हे पहाड़ों गला खोल कर जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है और अपने दीन लोगों पर दया की है। उत्पत्ति। अपने पिता को मिट्टी देकर यूसुफ अपने भाइयों और उन सब समेत जो उसके पिता को मिट्टी देने के लिए उसके संग गए थे, मिस्र में लौट आया। जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया है, तब कहने लगे, कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े और जितनी बुराई हमने उससे की थी, सबका पूरा पलटा हमसे ले। इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास ये कहला भेजा कि तेरे पिता ने मरने से पहले हमें ये आज्ञा दी थी कि तुम लोग यूसुफ से प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर, हमने तुझसे बुराई की थी, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा और उसके भाई आप भी जाकर उसके सामने गिर पड़े और कहा, देख हम तेरे दास हैं। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वो ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रगत है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। सो अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूँगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझा कर शांति दी। यूहन्ना। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया और भोर को फिर मंदिर में आया और सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ी करके यीशु से कहा, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते ही पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों को पथरावा करें, सो तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसे परखने के लिए ये बात कही थी ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाएं। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वो उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि तुम में जो कोई निष्पाप हो वही इसको पहले पत्थर मारे, और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वो ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वो कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। मत्ती। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुने तक। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वो लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े ठहराता था। जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था तो उसके स्वामी ने कहा कि ये और इसकी पत्नी और लड़के बाले और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और वो कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका उधार क्षमा कर दिया। इतिहास। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु है, और यदि तुम उसकी ओर फिरोगे तो वो अपना मुंह तुमसे ना मोड़ेगा। भजन संहिता। हे यहोवा, कान लगाकर मेरी सुन ले, क्योंकि मैं दीन और दारिद्र हूँ। मेरे प्राण की रक्षा कर, क्योंकि मैं भक्त हूँ। तू मेरा परमेश्वर है, इसलिए अपने दास का, जिसका भरोसा तुझ पर है, उद्धार कर। हे प्रभु, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझी को लगातार पुकारता रहता हूँ। अपने दास के मन को आनंदित कर, क्योंकि हे प्रभु, मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। क्योंकि हे प्रभु, तू भला और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरे गिड़गिड़ाने को ध्यान से सुन। संकट के दिन मैं तुझको पुकारूंगा, क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। हे प्रभु, देवताओं में से कोई भी तेरे तुले नहीं, और ना किसी के काम तेरे कामों के बराबर हैं। करंथियों। हम तो सीमा से बाहर घुमंड कदापि ना करेंगे, परंतु उसी सीमा तक जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहरा दी है, और उसमें तुम भी आगे हो और उसी के अनुसार घुमंड भी करेंगे। मत्ती। हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के सहास संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। क्रिश्चियनिटी का विज्ञान हाथ से पंखे के साथ गेहूं को अलग करने के लिए आता है। ज्ञान ईश्वर को अष्ट घोषित करेगा और मसीही धर्म उस घोषणा और उसके ईश्वरीय सिद्धांत को प्रदर्शित करेगा जिससे मानव जाति शारीरिक, नैतिक और आध्यात्मिक रूप से बेहतर होगी। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे। क्रिश्चियन साइंस भावतिक इंद्रियों के प्रमाण से ऊपर उठती है, परंतु यदि आप स्वयं पाप से ऊपर नहीं उठे हैं तो बुराई या उस भलाई के प्रति अपने अंधेपन के लिए स्वयं को बधाई ना दें जिसे आप जानते हैं और आपने किया नहीं। एक बेईमान स्थिति मसीही विज्ञानतिका से बहुत दूर है। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। यीशु की प्रार्थना हमें हमारे पापों को माफ कर दो, क्षमा की शर्तों को भी निर्देशित किया। व्यभिचारी स्त्री को क्षमा करते हुए उसने कहा, जा और फिर पाप मत करना। पाप और क्षमा स्वर्थ और कामुकता की आशा के बीच में पेंडुलम की तरह झूलते हुए निरंतर प्रतिगमन का कारण बनता है। हमारी नैतिक प्रगति धीमी होगी। मसीह की मांग के प्रति जागते हुए नश्वर दुख का अनुभव करते हैं। ये उनके कारण होता है, यहाँ तक कि डूबने वाले पुरुषों के रूप में खुद को बचाने के लिए जोरदार प्रयास करना और मसीह के अनमोल प्रेम के माध्यम से इन प्रयासों को सफलता मिली। पश्चाताप और पीड़ा के हर दर्द, सुधार के लिए हर प्रयास, हर अच्छा विचार और काम हमें पाप के लिए यीशु के प्रायश्चित को समझने और उसकी प्रभावकारिता की सहायता करने में मदद करेगा। लेकिन अगर पापी प्रार्थना और पश्चाताप करना, पाप करना और क्षमा करना जारी रखता है तो उसके पास प्रायश्चित में बहुत कम हिस्सा है परमेश्वर के साथ एकता में, क्योंकि उसके पास व्यावहारिक पश्चाताप का अभाव है जो हृदय को सुधारता है और मनुष्य को ज्ञान की इच्छा करने में सक्षम बनाता है। जो लोग प्रदर्शन नहीं कर सकते, कम से कम भाग में हमारे गुरु की शिक्षाओं और अभ्यास के दिव्य सिद्धांत का भगवान में कोई हिस्सा नहीं है। यदि उसके प्रति अज्ञान में रहते हैं तो हमें कोई सुरक्षा महसूस नहीं करनी चाहिए, हालांकि भगवान अच्छा है। विज्ञान में कोई पाखंड नहीं है, सिद्धांत अनिवार्य है। आप मानवीय इच्छा से इसका मजाक नहीं उड़ा सकते। विज्ञान ईश्वरीय मांग है, मानवीय मांग नहीं। सदा सही होने के कारण इसका दायित्व कभी पछताता नहीं, बल्कि त्रुटि को शांत करके सत्य के दावे को कायम रखता है। ईश्वरीय दया की क्षमा त्रुटि का नाश है। यदि लोग अपने वास्तविक आध्यात्मिक स्रोत को सभी आशीषों के रूप में समझते हैं तो वो आध्यात्मिकता के लिए संघर्ष करेंगे और शांति से रहेंगे। लेकिन नश्वर मन जितनी गहरी त्रुटि में डूबा है, आध्यात्मिकता का विरोध उतना ही तीव्र है, जब तक कि त्रुटि सत्य के सामने नहीं आ जाती। अपराध पर लगाम लगाने, हिंसा के कार्यों को रोकने या उन्हें दंडित करने के लिए अदालतें और निर्णायक मंडल नश्वर लोगों का न्याय करती हैं और उन्हें सजा देती हैं। ये कहना कि इन न्याय अधिकारियों का शारीरिक या नश्वर मन पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, उदाहरण का खंडन करना होगा और ये स्वीकार करना होगा कि मानव कानून की शक्ति पदार्थ तक ही सीमित है, जबकि नश्वर मन बुराई जो वास्तविक गैर कानूनी है न्याय की अवहेलना करता है और ये दया करने की अनुशंसा करता है। क्या पदार्थ अपराध कर सकता है? क्या पदार्थ को सजा दी जा सकती है? क्या आप उस मानसिकता को उस निकाय से अलग कर सकते हैं जिस पर न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र है? नश्वर मन कोई पदार्थ नहीं, हर मामले में अपराधी है और मानव कानून अपराध का सही अनुमान लगाता है और अदालतें मकसद के अनुसार उचित रूप से सजा सुनाती हैं। त्रुटि और सत्य के बीच, मांस और आत्मा के बीच ना तो कोई वर्तमान है और ना शाश्वत सह साझेदारी है। ईश्वर पाप, बीमारी और मृत्यु पैदा करने में असमर्थ है, क्योंकि वो इन त्रुटियों का अनुभव कर रहा है। उसके बाद मनुष्य के लिए ये कैसे संभव है कि वो त्रुटियों का इस तरह अधीन हो, यानी वो मनुष्य जो दिव्य समानता में बना है? क्या ईश्वर स्वयं से, आत्मा से भावतिक मनुष्य का निर्माण करता है? क्या बुराई अच्छाई से आगे बढ़ती है? क्या ईश्वरीय प्रेम मनुष्य को पाप की ओर प्रवृत्त करके और फिर उसके लिए उसे दंड देकर मानवता के साथ धोखा करता है। क्या कोई इसे अधीम बनाने या फिर उस युद्धपन को दंडित करने को बुद्धिमानी और अच्छा कहेगा? यदि भावतिकवादी ज्ञान शक्ति है तो वो बुद्धि नहीं है, ये एक अंधी शक्ति है। मनुष्य ने कई आविष्कारों की खोज की है, लेकिन उसे अभी तक ये सच नहीं लगा है कि ज्ञान उसे ज्ञान के भयानक प्रभावों से बचा सकता है। अपने शरीर पर नश्वर मन की शक्ति को बहुत कम समझा जाता है। इस सपने को कायम रखने वाले झूठे सुकून से बेहतर है वो दुख जो नश्वर मन को उसके शारीरिक सपने से जगाएगा। पाप ही मृत्यु लाता है, क्योंकि पाप ही विनाश का एकमात्र तत्व है। उससे डरे जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट करने में सक्षम है, यीशु ने कहा। इस पाठ के सावधानी पूर्वक अध्ययन से पता चलता है कि यहाँ आत्मा शब्द का अर्थ गलती या भावतिक चेतना है। ये आदेश रोम का नहीं, शैतान का नहीं, ईश्वर का नहीं, बल्कि पाप से सावधान रहने की चेतावनी थी। बीमारी, पाप और मृत्यु जीवन या सत्य के सहूर्ति नहीं है। कोई कानून उनका समर्थन नहीं करता। उनकी सत्ता स्थापित करने के लिए ईश्वर के साथ उनका कोई संबंध नहीं है। पाप अपना नरक स्वयं बनाता है और अच्छाई अपना स्वर्ग स्वयं बनाती है। पाप का नाश ही क्षमा का दिव्य तरीका है। ईश्वर जीवन मृत्यु को नष्ट करता है, सत्य त्रुटि को नष्ट करता है और प्रेम घृणा को नष्ट करता है। नष्ट होने के नाते पाप को क्षमा का कोई अन्य रूप नहीं है। क्या ईश्वर की क्षमा किसी एक पाप को नष्ट करने, भविष्यवाणी करने और सभी पापों के अंतिम विनाश को शामिल नहीं करती है? किसने महसूस किया है कि मानवीय शांति का नुकसान आध्यात्मिकता के लिए मजबूत इच्छाओं को प्राप्त नहीं हुआ है? स्वर्गीय भलाई के बाद की आकांक्षा इससे पहले कि हमें पता चले कि ज्ञान और प्रेम का क्या संबंध है। सांसारिक आशाओं और सुखों का नुकसान कई दिलों के आरोही मार्ग को उज्जवल कर देता है। भावना के दर्द हमें जल्दी से सूचित कर देते हैं कि भावना के सुख नश्वर हैं और ये आनंद आध्यात्मिक है। भावना के दर्द सलामत हैं यदि वो झूठे सुखदायक विश्वासों को मिटा देते हैं और भावनाओं को आत्मा से आत्मा तक पहुंचाते हैं, जहां ईश्वर की रचनाएं अच्छाई हैं। ये हृदय को आनंदित करता है। ये विज्ञान की तलवार है जिसके साथ सत्य त्रुटि को नष्ट करता है। भावतिकता मनुष्य के उच्च व्यक्तित्व और भाग्य को स्थान देती है। वो समय निकट आता है जब नश्वर मन अपने भावतिक संरचन, आत्मिक और भावतिक आधार को त्याग देगा, जब विज्ञान में अमर मन और उसके घुटन को पकड़ लिया जाएगा और भावतिक विश्वास आध्यात्मिक तत्वों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मनुष्य अविनाशी और शाश्वत है। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में शापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समर्थ कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, पारोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परमाश देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझावों से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।